اسے تم جیل کیسے کہتے ہو؟ بولے اسے جیل کے اس جیل کی دیواروں کا نام ہے کہ بے ان کے ان سیما کے باہر نہیں جا سکتے, اس کا نام ہے. کیوں؟ بولو تو وہ کہتے بند ہوا, ہم یہ بند پنا بھول جاتے ہیں اور اسے پنیہ منو پاپ کا بھید کرتے ہیں, تو ہم بند تتو کو صحیح نہیں سمجھ پائے. بند تتو کو صحیح سمجھنا جب ہوگا کہ جب ہم ان دونوں سے بند ہوتا ہے ایسا مان کر دونوں کے پرتی ہمارے ہردے میں ایک سا ہی کیا ہو, اروچی بھاو. اروچی بھاو بولتے ہیں روچی بنے سدھا گن کی پر جائے, مانے ایک سا ہی اپنا پن نہیں ہو, اچھا پن نہیں ہو. وہ کہتے ہیں تھوڑا فرق رکھو کہ وہ بہت برا یہ کم برا, کہتے یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ کم برا اور بہت برا کا بھید کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں, گیتا میں شری کرشن نے بھی ارجن کو یہی سمجھایا تھا. کیا سمجھایا تھا؟ کہ ارجن کہتا تھا یہ گرو جی ہیں سامنے جو کھڑے ہیں دونوں تائیں, یہ تاؤ جی ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, یہ بھائی ہے میرا, یہ بھانجا ہے. تو شری کرشن کہتے ہیں بیٹا یدھ کے میدان میں صرف شترو یا متر ہوتے ہیں, کوئی بھائی نہیں ہوتا, گرو نہیں ہوتا, ششیہ نہیں ہوتا. یہ سب رشتے تو گھروں میں ہوتے ہیں. جو سامنے کھڑا ہے وہ شترو اور جو ہمارے طرف بڑا ہے وہ متر, بس اتنا ہوتا ہے. اور جو تم نے اس آگے بھید میں گئے تو تم یدھ نہیں جیت سکتے. پھر تم میں سیناپتی بننے لائق نہیں ہو. کیا یدھ کے میدان وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا بند یا موکش. تو بولو پنیہ بننے والا موکش ہے نا, اسے موکش ملے گا کچھ کہ نہیں؟ یعنی وہ تھوڑا تھوڑا ہم کہیں نہ کہیں سے مان لیں گے, کوئی ویوہار سے یہاں سے وہاں سے, اسی اگیان کے لیے تو ہم ساری اتنی محنت کر رہے ہیں. لیکن جس کے سنسار سمندر کا کنارہ نزدیک نہیں آیا ہوگا وہ نہیں مانے گا, کسی قیمت پر نہیں مانے گا. کوئی نہ کوئی راستے نکال کے لائے گا, سارا شاستر پڑھے گا اور ان میں سے نکال لائے گا. یہاں لکھا ہے پرمپرا ہیتو ہے فلم ہے ہیتو ہے, کچھ نہ کچھ لائے گا. اور کہیں بھی آچاریہ بھول گئے ہوں گے پرمپرا لکھنا, اور پنیہ کا ہیتو ہی لکھ دیا ہوگا سیدھا موکش کا, تو پھر تو اس کو جیسے گلگلیا چھوٹے گی جیسے بہت بڑی بات ہو گئی. یہ سب سے بڑی سمسیا ہے. دیکھو اس میں زیادہ سمے لگاتا ہوں نہیں چاہتا ہوں میں بھی. جو باتیں 262 گاتھا میں مارنے اور بچانے کے سندرب میں کہی گئی ہیں وہ سبھی یہاں ان گاتھاؤں میں ستیہ بولنے اور اسطیہ بولنے, چوری کرنے اور چوری نہ کرنے, سیل پالنے اور سیل نہ پالنے, اور پریگرہ رکھنے اور پریگرہ نہ رکھنے کے سندرب میں سمجھ لینا چاہیے. اس پرکار ان گاتھاؤں میں یہی کہا گیا ہے کہ پنیہ بند اور پاپ بند دونوں ہی پرکار کے بندھوں کا کارن تو ایک ماتر ادبسان بھاو ہی ہے. وہ بتانے کا بھاو اور مارنے کا بھاو نہیں ہے. ان کا بھاووں کا کرتا میں ہوں اور میں مار بتا سکتا ہوں, جو یہ بدھی ہے یہ بند کا کارن ہے اور یہ نشکرش ہے میرے کہنے کا مطلب. اب اپن چاہیں تو جتنی ہنسا ہنسا کے بارے میں ترک یکتیاں اپن نے پچھلے 8-10 دن میں دیں, ایک ایک کے بارے میں پوری پھر دہرائی نہ سکتی ہیں. تو اس میں سے اب اپن کتنے دن ہو گئے, 15 دن ہو گئے, تو اپن 2 مہینہ نکال سکتے ہیں. ستیہ کے بارے میں 15 دن, پھر چوری کے بارے میں 15 دن, پھر برہمچرے برہمچری کے بارے میں 15 دن, پھر پریگرہ کے بارے میں 15 دن. تو وہی کے وہی ترک وہی کے وہی یکتیاں پوری کی پوری دیں. بولو یدپی یہ بات بگت گاتھاؤں میں اسپشٹ ہو گئی ہے کہ بند کا کارن ادبسان بھاو ہی ہیں, تتھاپی کچھ لوگوں کے ہردے میں یہ وکلپ بنا ہی رہتا ہے کہ ادبسان کے اترکت بند کا کارن کوئی باہی وستو بھی ہونی چاہیے. अज्ञानियों के इस विकल्प को दूर करने के लिए 265वीं गाथा लिखी जा गई है, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। आप समझ लो कि कुंद के भी वो भी यही बात के लिए परेशान थे, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे क्या। अमृतचंद्र भी, सब जितना भी समाचार के प्रवक्ता हैं, क्योंकि लक्षण दिखते ही नहीं है। अभी मैं कोई व्रत पालने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, दान देने की महिमा गाऊं तो सब एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे, तालियां बज जाएंगी। अभी ऐसे मुर्दे ही वैसे हैं कि जैसे कुछ कुछ हो गए, बहुत सासों की बातें नहीं आ रही क्यों। ऐसी कुंद की सभा में भी होगी, अम्बेचंद की सभा में भी होगी, अन्यथा भी यही समापन समारोह कर देते इस बंद अधिकार का दादा, क्योंकि ऐसो बंद समास तो कह चुके हैं। ऐसा बंद का संक्षेप में कथन है, ऐसा दिनेंद्र भगवान ने कहा। अब फिर वो आगे गाथा कहते हैं, चलो पढ़ो भैया। बस तुम
पढ़ो चंपण अच्छाणम तो वो दिजीवाणम नयवत्सु दो दुबंधो अच्छाणेण बंधोत्थि ये भाव अध्यवसान होते वस्तु के अवलंब से पर वस्तु से ना बंध हो ओ बंध अध्यवसान से।
अब देखो निकालो अपना पेज, इसमें 12 पेज निकालो, 13-14 निकालो, है ना। देखो ये जो गाथा 263-264 है ना, उसमें मैंने अनुशीलन में 2 पेज भी नहीं लिख पाया, एक पेज में ही मामला खत्म। वो तो अभी क्या करें, अमृतचंद का यहां तक आया तो 3-4 लाइनें यहां लिखनी पड़ी, अब बिल्कुल वैसी थोड़ी छोड़ देता मैं। और अभी अगली गाथा है, देखो कितने हैं, 10 पेज होंगे, कितने पेज हैं देखो, 22 कितने, 15-22 8 पेज हैं। और ये एक गाथा है, अभी 2 गाथाएं थी, क्योंकि फिर उठा दिया उसने। क्या प्रश्न उठाया है मालूम, कुछ ना कुछ पर वस्तु होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम सब हमारे माथे ही मर दो, है ये बात सही है कि हमारी कर्मर पर्याय में नहीं होगा ऐसा कि हमारी लड़की की संबंध इस लड़के के साथ हो, ऐसा भी हो सकता है हमारे पाप कर्म का उदय हो, ये सब बात हम मानने को तैयार हैं, लेकिन तुम पड़ोसी को बिल्कुल निरपराध घोषित कर दो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, थोड़ी तो इस पर रखो क्या, थोड़ा तो कहो उससे। हमारे पास आते हैं जो हमारे शांति जी वगैरह जैसे लोग, दादा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, हम समझाते होता है, इसमें कौन सी गजब की बात है, आप शांत रहो, ये सब कैसे शांत है, वो तो माँ बहन की गालियों पर उतर आया, उतर आया, छोड़ो ना। देखो साहब अब आप चाहे तो कुछ भी कहो, लेकिन 2 वाक्य तो बोलो उस नालायक को कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि कैसे वो है क्या जो बोले उसे, तो हमें क्यों समझा रहे हैं, क्यों तुम समझने आए हो ना बेटा, हमारे पास तो जो समझने आता है हम उसे समझा सकते हैं, जो लड़ने आता है ये हम नहीं समझा सकते। और ये बात हमने किससे सीखी, कांजी स्वामी से नहीं, किससे सीखी, अपने गुरु के गुरु से, समझ गया, गोपाल दास बरैया से सीखी, सुनना है, मक्खनलाल जी हमारे गुरु थे और गोपाल दास बरैया उनके गुरु थे। वो जितने शांत जैन धर्म के प्रचार में संलग्न जितने धर्मात्मा, उनके धर्मात्मापन का एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा तो आप उसको समझ जाएंगे, कि जब वो अपने बेटे के साथ बंबई गए तो जब बेटा मुरैना से बैठे थे तब वो 12 वर्ष का नहीं हुआ था, इसलिए आधा पकड़ ले लिया, और जब बंबई पहुंचे तो वो 12 वर्ष का हो गया था। तो बाबू के पास पहुंचे, तो बाबू साहब कितना पैसा लगेगा गुरुवाणी सहित वो बता दो तो मैं आपको दे दूं। क्यों कि क्यों कि तुमने टिकट लेते वक्त ध्यान क्यों नहीं रखा कि जब बारह वर्ष का हुआ नहीं था ना साहब, अब यहां उतरते वक्त हो गया, तुम्हें क्या तकलीफ है, काट दो रसीद। समझ गया कैसे आदमी होंगे ये आप समझ लो, आदमी कैसे होंगे ये उनके जीवन की ये कहानियां चलती हैं। और ऐसा नहीं समझना उन्हें कोई मान सम्मान नहीं था। जब वो बंबई जाते थे प्रदर्शन करने भूलेश्वर के मंदिर में, देखा आप लोगों ने भूलेश्वर का मंदिर, तो कहां उतरते थे, मुरैना से जाएंगे तो कहां उतरेंगे, गोरी बंदर, मैंने वो शिवाजी टर्मिनल हो गया ना क्या हो गया, गोरी बंदर पे उतरते थे। तो वो गोरी बंदर से लेकर और कबूतर खाना माने जहां पर चंद्रभ्रू मंदिर था वहां तक पावड़े बिछाए जाते थे। पावड़े तो समझते हो क्या, नहीं तो भूल ही जाओगे, अभी कभी कभी अपना विमान जी निकलता है ना तो उसके सामने बिछा बिछा करके चलते हैं ना, क्यों इतना उनका सम्मान था। आज की भाषा में रेड कारपेट वेलकम, उनका रेड कारपेट वेलकम होता था। वे अपने काम में मंगन और उनकी जितने वो धर्मात्मा थे पत्नी उतनी ही उल्टी मामला था, जितना वो शांत थे पत्नी उतनी ही ज्यादा गुस्सा थी। और गजब की बात तो ये है कि वो पत्नी हुक्का पीती थी, हुक्का समझते हो, वो गुड़गुड़ाते रहते हैं। खैर वो तो ठीक है, जो पिए तो पिए, महिलाएं तो बीड़ी तक नहीं पीती हैं तो वो पीती थी क्या। फिर उम्र गजब की बात ये थी कि रोजाना शाम को भर के तैयार करके रखना पड़ता था पंडित जी को, फिर तैयार करके अग्नि अग्नि लगा के रख देते थे और पंडितानी फिर गुड़गुड़ाया करती थी, पीती रहती। फिर कहानी हमारे गुरु जी हमें सुनाया करते थे, अपने गुरु जी की कहानी है ना। एक दिन चतुर्दशी थी तो पंडित जी दुकानदार दुकान करते थे और वह पढ़ाते भी थे, विद्यालय भी उन्होंने ही खोला था, ये सब विद्यार्थी थे। ये बनारस गए थे तो बनारस में ये सब लोग पढ़ते थे, जो पंडित जी ने विद्यालय खोला था ना उसमें, नाराज मत हो जाना थोड़ी पोल पट्टी खोलता हूं, सागर में बैठे खोलना बहुत मुश्किल है लेकिन खोलता हूं। उसमें वहां बनारस विश्वविद्यालय की पढ़ाई होती थी, जैन दर्शन की कोई विशिष्ट पढ़ाई का इंतजाम नहीं था। यूनिवर्सिटी में जो ब्राह्मणों के ग्रंथ थे लक्ष्मीनाम न्याय व्याकरण वो साहित्य वो पढ़ाया जाता था, समझ आया राजेन्द्र मन सर। तो जब जब गोपाल दास जी बरैया गए और उस विद्यालय का निरीक्षण किया तो सब पूछा क्या पढ़ते हो क्या पढ़ते हो, निकाल निकाले तो कुछ नहीं, सब साफ मामला था। और जो नौवीं से नल ज्ञान होंगे तो कुछ विकार किताब पढ़ा दी, दृप संग्रह की तीन गाथा पढ़ा दी थी, अभी हम पूछते ना इंटरव्यू रोजीना, फिर उसकी पांच गाथाएं पढ़ा दी थी, उसका ये हुआ था पांच साल की जहां पढ़ पढ़ के आए हैं धर्म, वो उनकी ऐसी पढ़ाई थी, यही उनने वहां देखा था। तो उन्होंने कहा क्या कहना पढ़ना है, कहा साहब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, गोमर साल पढ़ना है साहब, अच्छा पंचाध्यायी पढ़नी है, ये पढ़ना है कि हाँ, तो फिर आ जाओ हमारे मुरैना में, कोई विद्यालय विद्यालय नहीं था क्या, आ जाओ तुम, तो क्या करेंगे तुम पढ़ना हम पढ़ाएंगे क्या, कि खाएंगे पिएंगे क्या है, जो हम खाएंगे वो तुम खा लेना, समझे ना। इस तरह वो वहां आए, ले आए वो पांच सात विद्वानों को, जिनमें मक्खनलाल जी हमारे गुरु जी भी थे, बंशीधर जी नया अलंकार भी थे, देवकी नंदन जी भी थे दादा, और चार पांच विद्वान थे जो फर्स्ट बैच के थे गोपाल दास जी बरैया के, क्या वो फर्स्ट बैच के विद्वानों को ले आए और वो वहां उन्हें पढ़ाते थे और वे वहां पढ़ते थे। अरे एक विद्यालय थोड़ी जगह थी, किसी ने दे दी होगी तो वे वहां विद्यालय बनाते थे थोड़ा थोड़ा, तो वहां जीना को जगह नहीं थी, वो जीना दादा आज भी उस मर्यादा के बाहर है, वो सामने मंदिर की जगह थी, बहुत बड़ी बहुत जगह थी मंदिर की, और जीना को वहां जगह नहीं थी, तो ये मंदिर की जगह में पांच फुट और वो विद्यालय का जीना बनाना चाहते थे, तो रोजाना वो दिन में बनाते थे और रात में लोगों खार के फेंक जाते थे। और वो खुद बैरिया जी और उनके विद्यार्थी वो ईंट गालों लगा लगा करके जीना बनाते थे। इतना बढ़िया सहयोग था मुरैना वालों को। क्या ये विद्यार्थी है ना, यहां अभी बैठे हैं, अभी भगे नहीं ना, समझना है कैसी कैसी परिस्थितियों में लोगों ने जैन धर्म को जिंदा रखा है। ये दो तीन बातें मैंने थोड़ी इसलिए बताई दो मिनट में जैसे आपको उनका अंदाजा लग जाए। पंडित जी रोजाना मंदिर में प्रवचन करते थे, सामने ही मंदिर में, जिसमें से लोग ये उखाड़ देते थे। तो उस दिन चतुर्दशी थी, तो घर पे कुछ खाना पीना था नहीं, तो घर पे गए ही नहीं और सीधे थोड़े घूमने निकल गए और घूमने के बाद सीधे मंदिर में चले गए। अब मंदिर प्रणतान जी ने देखा कि भूपता तो आज तैयार ही नहीं है, तो बहुत चिंता और बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अभी पंडित जी मिलेंगे कहां, ये मुश्किल था। लेकिन 8 बज गए तो अब मंदिर में प्रवचन की गद्दी पर मिलेंगे, तो मंदिर की प्रवचन की गद्दी पर वहां पहुंची। सब सभा बैठी थी, पंडित जी ने मंगलाचरण कर लिया था और शुरू हो गया था प्रवचन। ए पता नहीं है तेरे को क्या है, क्या है वो हुक्का नहीं भरा आज? हाँ भूल गया, भूल गया भैया, आप लोग जरा बैठना, अभी मैं आता हूं, उनका हुक्का भर के फिर अपन 5 मिनट बाद प्रवचन शुरू करेंगे। पैसा नहीं था क्या? पंडित जी उसके चले गए। अब उस सभा में क्या हुआ होगा आप सोचो, वो तो इतनी मर्यादा मानते थे, उनकी कोई बोल नहीं सकता था एक शब्द। उस दिन तो सब लोगों की जबान खुल गई, कभी ये क्या है, ये चुपचाप चले गए उठ के, कि हम कोई डरते हैं, सारा अनुशासन हम पे ही, निंदा नहीं हो सकता। अब की बात तो पंडित जी को वापस आने दो, मैं तो एक प्रश्न पूछूंगा ही, कि भैया देखो मत पूछना ये अच्छा नहीं लगेगा, अपना सब ठीक नहीं है। नहीं नहीं तुम चाहे जो कुछ कहो मैं तो पूछूंगा, दूसरा वाला कहूं डरने की बात क्या पूछे उसमें क्या। सो चूहों ने मीटिंग करके बिल्ली के गले में घंटी बांधने का डिसीजन ले लिया। क्या आते ही पंडित जी से एक बोला, पंडित जी गजब हो गया, क्या कोई और रास्ता नहीं था, क्या कोई और रास्ता नहीं था? बोले बेटा तुम बता दो क्या हो सकता था दूसरा रास्ता। मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी प्रवचन शुरू हो जाए, तो मुझे सबसे ज्यादा शॉर्ट रास्ता यही दिखा कि 5-10 मिनट में हो गया ना प्रवचन शुरू, अब तुम और बताओ कि जिस रास्ते पे अपन चलते तो इससे जल्दी प्रवचन शुरू हो जाता। बोलो तो बता तो सकता नहीं है कोई के पास, जवाब तो था नहीं मालूम। बिल्कुल न्याय न्याय वाचस्पति थे, बहुत न्याय के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। तुम बोले क्या आप दुनिया भर को समझाते हैं, उसे नहीं समझा सकते। तो वहां जो जवाब दिया था वो जवाब मैं आपको आज दे रहा हूं। कौन सा, क्या दिया था उनने? जो समझना चाहता है मैं उसे समझाता हूं, जो समझना नहीं चाहता लड़ना चाहता है मैं उसे नहीं समझाता। बोलो तुम समझना चाहता हूं तो समझाता हूं, वो तो समझने तो आई नहीं थी, क्यों वो तो लड़ने आई थी और मैं लड़ना भी नहीं चाहता था, क्यों तो नहीं लड़ने का मुझे ये रास्ता दिखा, क्यों बोलो क्या करता है? बोलो आप बोलो क्या करता, आप बता सकते तो आप बता दो क्या करते हुए। एक आदमी बोला कि भगवान ने कैसी जोड़ी मिलाई। क्या कहा? भगवान ने कैसी जोड़ी मिलाई, एक इतना शांत 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 और दूसरा इतना क्रोधी क्रोधी, एक कैसी जोड़ी है? पंडित जी बोले बुरी जोड़ी है। अरे इससे बढ़िया जोड़ी दुनिया में कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। क्यों क्यों? क्योंकि यदि दोनों धर्म की रुचि वाले होते, क्यों कि दोनों ही क्रोधी होते तो क्या होता है? उसका उसकी जबान चलती, मेरा हाथ चलता, फिर पुलिस आती, वो मर जाती कुएं में गिर के और मैं जेल में जिंदगी बसरता। यही तो चार अंक का नायक होता हो जाता पूरा। यदि ऐसा होता क्यों दोनों एक से गुस्से वाले होते तो, कि दोनों शांत होते तो वो इससे भी बुरा, वो जोड़ा इससे भी बुरा। क्यों कि घी ढुल गया, ढुल जाने दो, जिस द्रव का जिस क्षेत्र में जिस काल में क्या करे इससे गृहस्थी चलेगी। जोड़ा ऐसा ही अच्छा होता है, एक ठंडा एक गर्म। माँ डांटे तो बाप पुचकार ले, बाप डांटे तो माँ पुचकार ले, दोनों ही मारने को जुड़ जाए तो बच्चा बचेगा घर में रहेगा। और तो क्यों क्या करना क्या करना, तो बच्चे की क्या हालत हो जाएगी सोचो। जोड़ा तो ऐसा ही अच्छा होता है, उसकी जिंदगी भी आराम से कट रही मेरे साथ शादी होने से। और मेरे लिए तो आपको क्या बताऊं, कितना बढ़िया निमित्त मिल ही नहीं सकता था। क्योंकि नित्य बैराग विदायिनी, सकल देखो तो बैराग, शब्द सुनो तो बैराग, उसके बारे में सोचो तो बैराग। राग पैदा ही नहीं होता, शाम को प्रवचन खत्म हो जाता है तो मंदिर में बैठे बैठे स्वाध्याय करता रहता हूं, क्योंकि सोचता हूं कि वो सो जाए तब घर पहुंचू, नहीं तो रात बिगड़ जाएगी क्या। और सुबह वो सो के उठती है उसके पहले चल देता हूं, क्योंकि बोनी ना बिगड़ जाए। क्यों इतना जो मैंने अध्ययन और स्वाध्याय किया है उसका कारण क्या है तुम्हें पता है? हैं? क्यों इसे तुम खराब क्यों कहते हो? वो भी पूरी जिंदगी जी लेगी, मुझे कुआ बावड़ी में नहीं गिरना पड़ेगा, है ना। और मैं भी अपने अध्यक्ष से अध्ययन मनन चिंतन तुम विद्यार्थियों को पढ़ाना लिखाना सब काम आराम से कर लूंगा। कैसा तरीका होता है सोचने का? ऐसे ऐसे लोगों ने, ऐसा मत समझना कि स्वामी जी ने, और भी ऐसे लोग थे बरनी जी गोपाल दास बरिया जैसे, कि जिन्होंने इस जैन धर्म को दिगंबर धर्म को आगे बढ़ाया। उसके पहले कोई तत्वा सूत्र पढ़ने वाला नहीं था, दो सूत्र शुद्ध नहीं बोल सकता था है? इन लोगों ने कितने कष्ट सहसा करे और जैन शिक्षा के प्रचार में और लोगों को ये बातें सिखाई। भाई साहब इस सागर तो सबसे ज्यादा कर्जदार है उनका, बरनी जी का है? ये जितने विद्वान बने हैं बनारस में इधर उधर, ये सब बरनी जी की कृपा से बने। बाकी बने गोपाल दास जी बरिया के पिता कृपा से बने, ये संस्कृत के विद्वान, ये साहित्याचार्य फलाने फलाने बड़ी बड़ी डिग्रियां, ये सब बरनी जी की वजह से बनी। अजय पंचाध्यायी के विशेषज्ञ, गोमर सार के विशेषज्ञ, वो गोपाल दास बरिया की देन है। ये दो महापुरुष ऐसे हैं कि जिनकी जोड़ में हजारों वर्ष में एक आदमी नहीं मिलेगा, कि जैसी परिस्थितियों में उन्होंने जैन धर्म को बचाए रखा। और ये विकांजी स्वामी है कि जो एक अध्यात्म का क्षेत्र छोटा छूटा हुआ था तो उन्होंने जगह जगह पहुंचाया, छूटा हुआ तो नहीं था। बरनी जी को ये आत्मख्याति थी का संस्कृत की, आद्योपांत कंठस्थ याद थी परमात्मा, और वे रोजाना इसका पाठ करते थे। वे समय सार के रसिया नहीं थे, बस फर्क कितना था। वे कहते थे ये काला अक्षर भैंस बराबर सामने बैठे लोग हैं, इन्हें समय सार सुनाऊंगा क्या समझ में आएगा, इन्हें नमो का मन तो आता नहीं है, हैं? इन्हें अभी खान पान का तो ठिकाना नहीं है, आलू जमी कन तो इनके छूटे नहीं है इनसे, हैं? इनको मैं पहले वो समझाऊं और बाद में आएगा तो विद्वानों से भी चर्चा करते थे कभी जरूरत पड़ती थी तो। स्वामी जी की यही परिस्थिति थी, स्वामी जी का भी हमने वही तमाशा देखा है। वो जाते थे स्वामी जी प्रवचन करते रहते थे और 10-20 बुढ़े बुढ़े घबराना नहीं, पगड़ी छाप बैठे रहते थे, आदेश होते रहते थे। ہم نے ایسا سوتا کبھی پہنچ جاتا تھا تو ہمیں دل کھل جاتا تھا کہ یہ سمجھے گا سمجھے گا، پلانتے کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی بہت سمے سے آئے گی گاتھا کا مرم بالکل اسی شدھ اکثروں میں برابر بولتے رہتے. بیٹا میں اپنا پاٹھ کر رہا ہوں، میں تو اپنی سوادھیائے کر رہا ہوں. جب ان سے کہا کہ تمہاری سرل بات میں کیا سرل باتیں بتاؤں، یہ کون بتائے گا پھر؟ یہ تو جو مرم مجھے مہا بھاگیہ سے مل گیا ہے ایک کیسے جن جن تک پہنچے گا؟ میں تو اپنا ایک ہی دھن کا دھنیا ہوں، جس کو سننا ہو سنو، جن کو نہیں سننا ہو نہیں سنو، میں سناؤں گا. سچی گھٹنا مجھے یاد ہے، تمل ناڈو میں مدراس میں، سمجھے آج کل کیا بولتے اسے، چینئی. وہ چینئی میں پنچ کلیانک تھا، ہزار یاتری ہم ساتھ میں تھے ان کے، اور وہ آئیں گے پنچ کلیانک میں. جب پنچ کلیانک میں پرچن ہوا، وہی ترکالی درو بھگوان آتما، وہ بالکل وہی وہ گجراتی میں بالکل بولے جا رہے. اور تمل ناڈو کی جنتا بیٹھی آگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی، وہ ہندی بھی نہیں سمجھے، وہ گجراتی تو سمجھے ہی نہیں، اور وہ باتیں تو سمجھے ہی نہیں، بالکل مردے جیسی بیٹھی. ہم لوگوں کو بہت آکلتا بھی کہ مہاراج جی کیا کرے، مہاراج کیا کرے، کچھ نہ کچھ ایسا کرو. تو ایک بھرت چکرورتی تھے، ہمارے سہپاٹھی تھے، مدنا ودیالیہ میں پڑھتے تھے، تو وہ اپنے موکش بن گئے تھے اپنے پرتن سے. تو انہیں ہم نے بلایا کہ یہ انواد کر کر کے جنتا کو سمجھائیں گے، وہ تمل بھاشا میں وہ بھرت چکرورتی سمجھائیں گے. وہ سمجھاتے تھے، کیا سمجھاتے، ان کو کیا سمجھ میں آئے. لیکن ایک گھنٹے تک کہیں سے کسی نے ٹک ٹک ہی نہیں ہٹائی. اس آدمی میں کیا تھا؟ ابھی پانچ منٹ میری بات سمجھ میں نہیں آیا نا، تو یہاں تہلکا مچ جائے گا اور سب پہنچ جائیں گے. کون ہے پرمود مرمود کن کے پاس تعداد آئی تو یہ نکٹن ہو گیا، سرل ہو گیا، جی زیادہ ہو گئی، جی نمک زیادہ ہو گیا، مرچی کم ہو گئی. تو آپ کے پاس آئے کوئی کیا کرے؟ وہ مہا پرتاپی، مہا پنیہمان، مہا پرش، ایک اکثر سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کوئی نے ٹک ٹکی لگا کر کے وہاں سے دشٹی ہٹائی نہیں. کیوں؟ کیا سب بہت پربھاونا ہوئی، سینکڑوں لوگ تمہیں ناڈی سے سون گڑھ آنے لگے، ہمارے مہا ودیالیہ میں ودیارتھی بھرتی ہونے لگے. ایک اکثر سمجھ میں نہیں آئے، اس سے بھی اتنے لوگ آئے، وہ سمجھ میں آتا تو کیا ہوتا؟ وہ اپنے ڈھنگ میں پکے رہے، ہوا کام. تو بھائی یہ ایک ایک مہاپرش، بہت بہت قرضہ ان لوگوں کا اپنے اوپر ہے. ان کے بارے میں انتھا سوچنا، ہم نے کوئی پورا جیون ان کا نہیں دیکھا ہے کہ اندر سے کیا تھے. کوئی ہم نے ایک سبھا میں سنا تھا پنڈت جی کو، ہم نے ایسا کیا تھا، یعنی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ سبھا میں تمہیں مورکھ سمجھ کے بول رہے، پھر کیا کریں ہم؟ اس سبھا سے ان کی مانیتا کا نرنے نہیں ہو سکتا بھائی صاحب. کیا ان کی سبھا سے سمجھ گئے نا آپ کہ کیا کہا تھا، کیسے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ آ جائیں اپن اپنی جگہ. کہاں تھے؟ 263. ہاں ہاں دیکھو، ادوسان ہی بندھ کا کارن ہے، باہی وستو نہیں. کیونکہ بندھ کے کارن بھوت ادوسانوں میں ہی باہی وستو کی چلتارستا ہے. تاتپر یہ ہے کہ بندھ کے کارن بھوت ادوسان کا کارن ہونے میں ہی باہی وستو کا کارچیتر پورا ہو جاتا ہے، وہ وستو بندھ کا کارن نہیں ہوتی. کرشن جی باہو وستو بندھ کا کارن نہیں ہے، تو باہو وستو کے تیاگ کا اپدیش کس لیے دیا جاتا ہے؟ بہت مارنے کا، ابھی سمجھاؤں گا، سب آئے گا سمجھ میں. ادوسان کے نشید کے لیے باہو وستو کا نشید کیا جاتا ہے. باہی وستو ادوسان کی آشرے بھوت ہے، کیونکہ باہی وستو کے آشرے سے کے بنا ادوسان اتپن نہیں ہوتا، اپنے سوروپ کو پراپت نہیں ہوتا. یعنی باہی وستو کے آشرے بنا ہی ادوسان اتپن ہو تو جس پرکار بیر جننی کے پتر کے سدبھاو میں، سمجھ لو ابھی پڑھ لیں گے بعد میں، اب سنو شانتی سے کیا کہہ رہے. یہ کہہ رہے کہ تم بار بار کہہ رہے ادوسان سے ہوتا ہے، ادوسان سے ہوتا ہے. सारा जनागम भरा पड़ा है कि परिग्रह छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, चोरी करना छोड़ो, हिंसा करना छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, सत्य बोलना सीखो। ये इतना इतना उपदेश जनागम में है तो मुझे जीरो ऐसी उड़ा है क्या? ये प्रश्न है, मिलेगा इसमें घबराना नहीं, आप शांति से पढ़ना घर पे, मिलेगा। मैं आपको समझा देता हूं कि तुम क्यों मना कर रहे हो। तो उनने कहा कि ये सारा उपदेश इसलिए है क्योंकि वो अद्वसान भाव जो बंध का कारण है वो इन बाह्य वस्तुओं के बिना नहीं होता। क्या अब क्या ये आपका आपको ये क्या कह रहे कि हमें मारने का भाव हुआ तो कोई आदमी होगा जिसे मारने का भाव हुआ होगा, वैसे ही आ गया बच्चे हवा हवा में। क्यों हमें बचाने का भाव हुआ तो किसी को बचाने का भाव हुआ होगा कि वैसे ही हवा में आ गया कि मुझे बचाने का भाव है मुझे मारने का, ऐसा होता ही नहीं। माने जो भी अद्वसान भाव होते हैं उसका आश्रयभूत पदार्थ कहीं ना कहीं वो बाहर ही होता है, तो हम उसको छोड़ने के लिए कहते हैं तो उसका अर्थ उस अद्वसान को छोड़ने से मतलब है। क्या कह रहे परिग्रह छोड़ने के लिए कहते हैं। इनने बहुत बढ़िया उदाहरण इसमें दिया है, मेरे दिमाग में बहुत उदाहरण है लेकिन मैं वही बताऊंगा कि किसी आदमी को वीर जननी के बेटे को मारने का विकल्प तो आता है, मैं कौंतेय को नहीं छोड़ूंगा और कोई मैं नहीं मारूंगा लेकिन कौंतेय कुंती के बेटे को नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहते किसी वीर की जननी है ना कुंती, कौन सी? युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। तो वीर जननी के बेटे को मारने का विकल्प आता है, वो वीर जननी के बेटे को मार सकता है ये नहीं बता रहे। उसे जो विकल्प आता है वो किसी वीर मां के बेटे को मारने का विकल्प आता है कि आज तक किसी को भी बांझ के बेटे को मारने का विकल्प नहीं आया। ये लिखा है, पढ़ना है पढ़ दो, संस्कृत में लिखा है, हिंदी में लिखा है, सब में लिखा है। देखो ये संस्कृत में देखो 381 पेज। तथा बंध्यासुतस्य आश्रयभूतस्य असद्भावे भी बंध्यासुतम हिनस्मि इति अद्वसायो न जाये। बांझ के बेटे को मारने का विकल्प आज तक किसी को नहीं आया। तो माने जिस को मारने बचाने का भाव आता है वो कोई ना कोई चीज सामने होनी चाहिए। चोरी करने का भाव तो वैसे ही आ गया, एक किताब चुराने का हुआ, गहना चुराने का हुआ, क्या हुआ ऐसा कोई ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं होता। झूठ बोलने का भाव आ रहा तो किससे? किसी से नहीं, वैसे हवा में झूठ बोलता, ऐसा नहीं होता। यदि विषय सेवन का भाव आया तो किससे? यदि वैसे ही वैसे, ऐसा नहीं होता। उसमें कोई ना कोई व्यक्ति उसके ज्ञान का गेय उस वक्त जरूर बनता है, विकल्प का आश्रयभूत बनता है कि मैं इसके साथ विषय भोग करूं, ख्याल में आई ना। ऐसे परिग्रह, कोई परिग्रह इसे जोड़ूं बिना उसके भाव नहीं होता। तो कहते हैं कि आश्रयभूत पदार्थ के बिना वो विकल्प खड़ा नहीं होता, वो अद्वसान भाव खड़ा नहीं होता। बस इतनी सी बात की वजह से इस सारे के सारे आगम लिखे हैं। अब क्या कहूं, अब तुम लाख लाख ननकाल निकाल के मेरे पास लाओ, अब एक इतना सा जवाब है, अब आप नहीं मानो उसका तो हो गया जवाब, जो दूसरा लिखा तो अब इसमें लिखा तो, अरे भाई सबका एक ही जवाब है ना। अब इसे नहीं निपटता इतना भी। तो वो कहते हैं कि अब हो गया ना, फिर प्रतिबिंब प्रतिबिंब इतना हेतु हो गया ना कि वो अद्वसान का हेतु तो बनता है, वो कारण तो बनता है। सुनो क्या, अब आगे ना पकड़ में तुम 15 दिन में आए मुश्किल से। तो वो कहते हैं भैया कि वो आश्रयभूत पदार्थ तो होता है लेकिन उसकी वजह से बंद नहीं होता, बंद अद्वसान की वजह से होता है। क्या हम उसकी बोल रहे, ये बोल रहा है कि अद्वसान उसकी वजह से होता, उसकी वजह से नहीं उसके लक्ष्य से। इसमें लिखा है कि वो कारण नहीं है, वो कारण का कारण है, निमित्त, निमित्त की अपेक्षा, उपादान की अपेक्षा नहीं। ये लिखा है शब्दों में बोल रहा हूं, इसमें एक कोमा फुल स्टॉप में यहां वहां नहीं जा रहा हूं आगम में से। समझ में क्या लिखा कि वो आश्रय भूत निमित्त है, वो उदय रूप निमित्त नहीं है। जैसे कर्म का उदय है ना उदय रूप निमित्त, ऐसा वो आश्रय भूत निमित्त है। मुझे पक्का याद है कि जब मैं जयपुर आया था, दो तीन ही वर्ष हुए थे, तो छोटे बरनी जी, समझ गया ना, मनोहरलाल जी बरनी जयपुर में आए थे, आदर्श नगर आए थे, हम लोग निमंत्रण देने गए थे, तो हमारे जयपुर स्मारक में आए थे, 8 दिन रहे थे, रोजाना शाम को प्रवचन करते थे, है ना। तो एक उस वक्त एक कहते थे वो बार बार मेरे से, भैया तुम लोग जितना निमित्तों का खंडन करते हो वे सब आश्रयभूत निमित्त हैं, उदय रूप निमित्त की तो तुम बात ही नहीं करते। क्या मतलब, जैसे अपन उदाहरण देते हैं ना कि वो निमित्त क्या हुआ, वो फलाना था, ऐसा निमित्त था, उसे क्या हो गया, उसे कुछ नहीं होता है, आकेश में बिल्ली, तो वो तो गेरूप निमित्त है, उसे बोलते आश्रयभूत निमित्त है, और ये कर्म तो उदय रूप निमित्त है, तो प्रेरक है, ऐसा ऐसा बोलते थे। क्या जितने भी तुम निमित्त के खंडन करने के लिए उदाहरण देते हो वे सब आश्रयभूत निमित्तों के देते हो, क्योंकि वो आश्रयभूत निमित्त कुछ करता नहीं। ये बनी जी कहते थे, और वे मानते थे उदय रूप करता है। अब उसी राग में परमात्म, अभी राग का जो उदय हुआ, राग आया तो उसमें राग नामक कर्म का उदय हुआ। उसमें राग नामक कर्म कौन सा, तो राग माने वो हुआ ना, माया हुआ होगी ना, लोभ हुआ होगा, तो लोभ नामक कर्म के उदय, तो वो उदय रूप निमित्त थे, वो जिसका लोभ हुआ वो आश्रय भूत निमित्त। अब दो निमित्त हो गए ना, कौन राजन जी, बस दो पांच ही मिनट की सजा है, ज्यादा नहीं है, है? है? सजा नहीं है। अच्छा, ये आश्रयभूत निमित्त हो, एक उदय रूप निमित्त। अब वो कहते हैं कि तुम कहते हो अद्वसान भाव ही बनने के कारण है, ना तुम आश्रयभूत निमित्त को मानते हो और ना उदय रूप निमित्त को मानते हो। तो वो कहते वो हेतु का हेतु है, वो कारण का कारण है, माने ये जो परद्रव्य में कारण कार्य संबंध है, ये निमित्त निमित्त भाव की अपेक्षा ही हो सकता है, उपादान उपादान भाव की अपेक्षा से नहीं हो सकता। इसलिए उपादान कारण अपने तत्समय की योग्यता, वो द्रव्य अनंतपुर प्रति प्रजाओं के क्रमशः दाना ये है, और ये तो अब परद्रव्य रूप निमित्त है, तो वो बस वो निमित्त का निमित्त है। वो कहते रागादि भाव भी निमित्त हैं, तो अद्वसान भाव बंद के निमित्त हैं, उपादान तो अभी तत्समय की योग्यता है क्या, और वो आश्रयभूत पदार्थ उदय रूप पदार्थ वे तो निमित्त के निमित्त हैं। ये निमित्त के निमित्त क्या होता है, बहुत लोग इसमें माथा पच्ची करते, वो समझ में नहीं आता उनके। अपना साला है वो साला है, और बहनोई है, और मामा मामा है, और फूफा फूफा है। अब मैं एक प्रश्न करता हूं छोटा सा, भैया साहब मामा के साले को क्या कहते हैं, साले के साले को क्या कहते हैं, बहनोई के बहनोई को क्या कहते हैं, फूफा के बहनोई को क्या कहते हैं, है कोई अपने पास शब्द क्या, मामा के साले को मामा चलता है। तो ये बात सही है, ये प्रयोग सही है, तो मामा का साला मामा है, मामा तो नहीं है, और बहनोई का बहनोई बहनोई है। अरे राजस्थान में जाओ, अकेला अपनी लड़की जिसको दी है वो जमाई, बाकी के सब ब्याई, कुछ नहीं है, और बाकी के जीरो हैं। वो अपना जो बहन जिसको दिए वो बहनोई, और उसके भाई हमारे कुछ नहीं। अब वो कैसी बात करते हो, अरे उसकी लड़की हम ले सकते हैं तो हमारे कुछ कैसे हो गए, कुछ होते तो हम उसकी लड़की कैसे ले लेते, समझ नहीं, वो गोत्र बच जाता है तो ले लेते हैं कुछ नहीं। तो वो ये कहते हैं کہ سالے کا سالہ, بہنوئی کا بہنوئی جیسا کچھ نہیں ہے, ہماری اس سے کوئی رشتے داری نہیں ہے. یعنی ہوتی تو بھارتی سنسکرتی میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی نام دیا گیا ہوتا, لیکن کسی بھی سنسکرت ہندی کی ڈکشنری میں وہ نام نہیں ملتا. اس کا کیا ہمارے آچاریہ کیا چاہتے ہیں کہ بھیا سمبندھ زیادہ بڑا ہو مت, یہیں تک بہت ہو, اتنے میں تمہاری کھٹیا کھڑی ہو جائے گی, اس سالے بہنوئی سے نبھا لینا, ماما پھوپا سے نبھا لینا, آگے اکے میں الجھے تو مرو گے. انگریز ہم سے بھی ہوشیار تھے. کیسے ہوشیار تھے؟ ان کے یہاں اپن بس اپنا ہی ہیں, اپنا بھائی بھی کچھ نہیں ہے, سگا بھائی. کیوں؟ وہ کیا ہے, مجھے کہتے ہیں اپنا پتا کا بھائی ہے نا, وہ بھی کچھ نہیں ہے, وہ بھی انکل, اور ماما بھی انکل, اور پھوپا بھی انکل, اور ہندو مسلمان بھی انکل. سب کے لیے ایک ہی شبد. کیوں؟ دو شبد ہیں نا, نہیں بس. اس کا مطلب وہ بھی ہمارا کچھ نہیں ہے, بس 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 ماں اور باپ, مدر اینڈ فادر, اور باقی سب انکل آنٹی بس. کچھ نہیں مطلب, انکل آنٹی مانا جس کو ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, وہ ماما کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہ ساما کو بھی کہہ سکتے ہیں. اب اپنے سگے بھائی کے, اپنے باپ کے بھائی کو کہا تو کیا فرق پڑا؟ کچھ نہیں ہے. تو دادا سے نا سمبندھ بڑھانا اچھی بات تھوڑی ہے, سمبندھ کم کرنا ہی اچھی بات ہے نا. اب تو ہم کرتے جا رہے ہیں, اب تو پتی پتنی بھی کوئی کسی کا نہیں ہے, سب کی انکم ٹیکس فائلیں الگ ہیں, سب کا دھن سمپتی روپیہ پیسہ مکان جائیداد سب الگ ہے, اکیلی ساری اور کرتا ہی نہیں ہے. ہندوستان میں نہیں تھے تو گورنمنٹ نے کر دیے, اس کی فائل الگ, اس کی فائل الگ, اس کی فائل الگ. کیوں؟ تو وہ کہتے بھیا وہ کون ہوا, وہ تو کوئی نہیں ہے, کارن کا کارن ہے نا, سمجھ گیا؟ وہ کون یہاں آ گیا نا, سمجھ میں. وہ ادوسان بھاو, اس کا ہیتو کون, وہ وستو. تو کہتے کارن ہے ادوسان بھاو, وہ نمت, وہ پالان تو وہ بھی نہیں ہے, وہ اس کا کارن ہے وہ, تو وہ تو سالے کا سالہ ہے جو کچھ نہیں ہے. وہ اس کا کرتا تین لوگوں تین کال میں نہیں ہو سکتا, بس کہتے ہیں.